وعدے کا واضح ہے تو وقت کے حسین ہو یا تو اپنے جان کی بازی لگاؤ اور لا الہ الا اللہ کو بچا لو اپنے، کیونکہ لا الہ الا اللہ تمہارے پلے نہ ہوا باقی نیکیاں کام آئیں گی. یہ گلاب دیوی، یہ سر گنگا رام، یہ لاڈ نیو، انہوں نے اتنے دن نیکی کے کام کیے ہیں، قیامت کے دن ان کے کام آئیں گے؟ کام تو نیکی کے ہی ہیں. تم کہو میں نے تو بڑے روزے رکھے، اللہ کہے گا اچھا روزے رکھے، اطاعت غیر کی کرتے رہے. لا الہ الا اللہ کہا تھا تمہیں، کوئی الہ نہیں ہے، تمہیں پہلے شکا ہی پیدا کر دیا، ابھی تو محمد رسول اللہ کی بات ہی نہیں آئی. تم نے میرے رسول کو رسول مانا؟ جس نظام کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، تم اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تکلیفیں برداشت کی، تو جو کہتا ہے ہائے میرا وقت، ہائے میرا پیسہ، ہائے میری نوکری، ہائے میرے بچے، ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے. یہ تیرے پاس صلاحیتیں کس کی دی ہوئی تھی؟ تو کس کی راہ میں لگائی؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگائیں گے؟ جس کا اقتدار ہے اس کا اقتدار لوگ چھینتے ہیں. با اختیار کو یہ اختیار دیا تھا، کائنات کی کوئی ہستی اس طرح چیلنج نہیں کرتی، لیکن انسان طاغوت ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، اور پھر یہ حرکتیں کرنے لگتا ہے. ہاں جس کو نہیں مانا جا سکتا اس سپریم پر، اس کو نہیں مانا جا سکتا جو ویتنام میں داخل ہو اور تھک کر ہار جائے، مان لیں گے اس کو؟ اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک علاقے کا نظام نہیں سنبھال سکتے، میں نے تو واسیہ کرسی اس سماوات والارض ولا یعودہ حفظہما، اسے تکاتی نہیں ہے ان کی حفاظت، نہ اسے اون آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے تھکاوٹ ہوتی ہے. وہ قوتوں والا ہے، وہ طاقتوں والا ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے، تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والی باتوں کو وہ جانتا. وہ علی العظیم والعلی ہے، وہی سب سے بلند ہے. علی نہیں کہا، العلی کہا ہے، عظیم نہیں کہا، العظیم کہا ہے، نہ اس جیسا کوئی علی ہے، نہ اس جیسا کوئی عظیم ہے، ایک ہی ہستی ہے، سپریم پار ایک ہی ہے، کوئی سپریم پار نہیں. لا اکراہ فی الدین، لا بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، اکراہ کراہت کرنا، زور جبر کرنا، طاقت کے ذریعے کوئی بات منوا لینا، بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، دین بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قد، یہ ہماری کتاب، یہ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارے رسول بتا دیا ہے تمہیں، ہم کوئی زبردستی نہیں کریں گے، تمہیں اختیار دے دیا ہے. مت سمجھنا کہ تمہاری اندر کوئی طاقت ایسی ہے جس کی وجہ سے تم اللہ کو بھی چیلنج کرتے ہو. اللہ نے انبیاء رسول بھیجے کہ تم ایسا اور ایسا اور ایسا نیک کام کرو، اور جب تم بد کرتے ہو تو مت سمجھو کہ اللہ کو کوئی شکست دے دی ہے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو تم نے استعمال کیا ہے، اصل اختیار تو اس کا ہے. انبیاء اور رسل ہارے، یہ ہار اور جیت کا بھی مسئلہ سن لیجئے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نیک آدمی الیکشن میں ہار جائے تو سمجھتے ہیں یہ ہار گیا، اور کہتے ہیں اس کے پاس کیونکہ ووٹ نہیں، اس کے پاس اس کی آواز پہ لبیک کہنے والے لوگ نہیں، لہذا یہ ہار گیا، اور جس کو ووٹ مل جائے ہم کہتے ہیں جیت گیا. نبی اللہ نے حضرت نوح کی اپنی عمر نہیں، ان کی دعوت کی عمر 950 سال ہے، 950 سال دعوت دی، और मुसलमान सिर्फ इतने हो गए जो एक कश्ती में आ गए और बस। अल्लाह ने कहा कि कौम हार गई, ऐ मेरे रसूल तू जीत गया। मैं कोई बात समझा सका कि नहीं? 70 के इलेक्शन में पूरे मुल्क में जमात इस्लामी ने अल्लाह के दीन के गलबे के लिए लोग खड़े किए, पूरे मुल्क में हार गई सिर्फ 4 सीटें। और कायदे तहरीक पिछड़े में लोग जो परेशान थे उनको ये कह रहे थे कि लोगों तुम्हें मुबारक हो, जिस मिशन को कायम करने के लिए तुम उठे थे मेरी इतला की हद तक तुमने कोई एक शख्स ऐसा खड़ा नहीं किया था जो किरदार के एतबार से अल्लाह का गुलाम न हो। तुमने बरादरी की बुनियाद पर और टके और पैसों की बुनियाद पर वोट नहीं दिए, तुम कामयाब हो गए हो क्योंकि ये अल्लाह का फरमान था, उसके रसूल की चाहत थी, तुमने उस पर अमल किया, तुम कामयाब हो गए हो। नाकाम वो हो गए जिन्होंने तुम्हें कबूल नहीं किया। मेरी इतला की हद तक तुमने पूरे मुल्क के अंदर जीतने के लिए बेईमानी का कोई रास्ता इख्तियार करके अल्लाह को नाराज नहीं किया, तुमने हारना कबूल कर लिया और बेईमानी का रास्ता इख्तियार नहीं किया। मैं तुम्हें मुबारक देता हूं कि तुम कामयाब हो गए, हार हो गए जिन्होंने बेईमानी के जरिए जीत का रास्ता इख्तियार किया। लोगों, हार और जीत हक और बातल के साथ होती है। सारी दुनिया हक को न माने, हक नहीं बदलता। सारी दुनिया बातल के साथ हो जाए, बातल हक नहीं बन सकता। तुमने पहरा देना यह कि लोगों की रवैया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, क़यामत के रोज वो सारे के सारे लोग अल्लाह के कटारे में खड़े होंगे, मुजरमों के तरह खड़े होंगे, शर्मसार खड़े होंगे और फरिश्ते उनके बालों से पकड़ कर उनको घसीटते हुए और उनकी पीठों पर मारते हुए उन्हें लेकर जा रहे होंगे। और अल्लाह वाले हुसैनी काफले के लोग हंसते हुए जा रहे होंगे, मुस्कुराते हुए जा रहे होंगे, जन्नतों की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि सच कहा था मेरे अल्लाह ने, वो सच हमें मिल गया जिससे हमसे वादा किया था। कौन सी कामयाबी बेहतर है? बाजार से हुसैन को जिंदगी दुनिया की खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह ने कहा जिसने कहा कि हुसैन मर गया वो गुनाहगार हो जाएगा, हुसैन जिंदा है, हमारे यहां से खाता और पीता है, तुम्हें उसकी जिंदगी का शौर नहीं। बजा तो जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन अलीम जानता है जिंदगी खत्म नहीं हुई, वो तो हय्युल कय्यूम कहता है। हय्युल कय्यूम ही बेहतर जानता है कि जिंदगी की माहियत क्या है, दूसरा नहीं जान सकता।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم لا إكراه في الدين ला इकराह, ला का कलमा भी हमारी जुबान का है, नफी और मना करने के लिए इस्तेमाल होता है। इकराह और क्राह का कलमा भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। जोर जबरदस्ती तबीयत और मिजाज से हटकर कोई बात हो उसे कराहत कहते हैं, मिजाज के खिलाफ कोई बात नहीं, कोई जोर और कोई जबरदस्ती नहीं। ला इकराह फी का कलमा भी हमारी ही जुबान का है, हम फी सबीलिल्लाह का कलमा इस्तेमाल करते हैं, फिलफौर का कलमा इस्तेमाल करते हैं, फीसद का कलमा इस्तेमाल करते हैं, ला इकराह फिद दीन और दीन का कलमा भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ज़ाता हयात के माने में, जिंदगी गुजारने का तरीका करीना और सलीका के मानों के अंदर हम दीन का कलमा इस्तेमाल करते हैं।
और इस्तेलाहन ये कलिमा दीन इस्तेमाल होता है वो कवायद, वो जवाबत, वो तरीके, वो करीने, वो सलीके जो अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए हमारी जिंदगियों के लिए भेजे हैं, उस सारे तरीकों का नाम अद्दीन है। ला इकराह फिद्दीन, जिसका नाम इस्लाम है, उसके अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन, कद का कलमा भी हमने पढ़ा है कि बार बार आने वालों में से है, यकीनन के मानों में, ताकीद के मानों में होता है, इल्ला हो, अल्लाह हो, कद आ जाए, लामे लाजम आ जाए, दोनों मिला के लकद भी आ जाए या इन्नामा आ जाए, इन सब के मानी बेशक ही होते, यकीनन ही होते हैं। लकद तबैयना, बैयाना या बैयनों तो बयाना हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बयान करना, वाजे करना, वजाहत करना। लकद तबैयना, वाजे हो गया है यकीनन। और रुश्द, रुश्द का कलमा भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, मुर्शद का कलमा भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, रुश्द व हदायत का सत्यश्मा ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कलिमा। रुश्द कहते हैं हदायत, और अर्रुश्द वो खास हदायत जो अल्लाह ने अपने अंबिया के जरिए इंसानों की हदायत के लिए भेजी, वो अर्रुश्द है। वैसे तो हर वो चीज जो एक मुरब्बी, एक बाप, एक मां अपने बच्चे को समझा रही है, एक उस्ताद अपने तालिब को समझा रहा है, वो रुश्द है। लेकिन अर्रुश्द नहीं है, अर्रुश्द वो है जो अल्लाह ने समझाया है, अल्लाह की हदायत और अल्लाह की तालीमात अर्रुश्द है। उस हदायत से मिनल गई, गई कहते हैं बातिल को, गई कहते हैं झूठ को, गई कहते हैं गलत चीज को। ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कद तबय्यन अर्रुश्द मिनल गई, सही बात गलत ख्यालात से अलग छांट कर रख दी गई है, वाजे कर दी गई है, ये सही है, ये गलत है, बिल्कुल वाजे कर दिया गया है। उसमें कोई इबहाम नहीं अल्लाह ने रखा अपनी हदायत और तालीमात के अंदर, हर बात को वाजे वाजे कर दिया है। और जब हम इस पर गौर करते हैं तो यूं लगता है जिस तरह रसूलुल्लाह हमें उंगली पकड़कर उस राह पे चला रहे हैं जिसका नाम सिराते मुस्तकीम है। कमई यकफुर बिताहू कमन, ता का मतलब तस, मन का मतलब जो, ये भी 1.5 में से है, बार बार आने वाला कलीमा है। यकफुर ये तो शुरू में लग गई, ये तो फेल मुजारे और थर्ड पर्सन की अलामत है, वो उसका तर्जमा करते हैं। और कुफर का तर्जमा भी हमारी अपनी जुबान में इस्तेमाल होता है, मई यकफुर, जिसने इनकार कर दिया, कुफर कर दिया, बिताहूत बे के साथ अताहूत, ताहूत का जिसने इनकार कर दिया। बड़ी अहम बात है ये, ताहूत का जिसने इनकार कर दिया पहले आया, और ताहूत से मुराद क्या है ये अभी हम पढ़ते हैं। हमारी जबान का कलिमा है ये, ताहूत का कलिमा भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। वह यूमिन बिल्लाह अमाना यूमिनू, अमाना वो शख्स ईमान ला, और यूमिनू वो ईमान लाता है या लाएगा, यूमिन बिल्लाह ही अल्लाह पर, जो ईमान लाता है अल्लाह पर। फकद इस्तमसका, ताबूत के मुकाबले पर किस पर ईमान लाता है, वो ताबूत का पहले कुफर करता है, उसका इनकार करता है, फिर अल्लाह पर ईमान लाता है। फकद, का मतलब पस, और कब का मतलब यकीनन, इस तमसा का उसने मस किया, उसने पकड़ लिया, बिल उर्वाती, वे का मतलब तो वही के साथ, उर्दू ही में इस्तेमाल होने वाला कलिमा है, जिस तरह हम कहते हैं बमा अहलो अयाल तशरीफ लाए, अहलो अयाल के साथ, बा जमात जमात के साथ, बिल उर्वाती, उर्वा कहते हैं किसी चीज का जो दस्ता जिसको पकड़ लिया जाए, वो कुंडा जिसमें हाथ डालकर अपने आप को किसी के साथ खड़ा कर लिया जाए, वो कुंडा वो दस्ता उर्वा कहलाता है। बिल उर्वतिल वुस्का, वाता का यशी को वाता का कहते हैं बांध देने को, मजबूती से बांध देना। आप कहते हैं उर्दू के अंदर कि ये मिसाक है। मिसाक किसे कहते हैं? वो अहद जो किसी को दूसरे के साथ जबरदस्ती जोर के साथ कुव्वत के साथ बांध देता है कि ये मुआहदा है, इसके अंदर तुमने खड़ा रहना, ये पक्का अहद जो होता है जो दूसरे को अपनी बातों के साथ बांध दिया जाता है वो मिसाक कहलाता है। बिल उर्वतिल वुस्का, उसने मजबूत सहारे को पकड़ लिया है, थाम लिया, उसका ही सबसे मजबूत को कहते हैं। ये बात बड़ी सिका है, ये बात बड़ी मजबूत है, ये बात बड़ी हकीकत वाली है, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। लन फिसाम लह, ला नहीं है फिसाम, लन फिसाम लह, ये टूटने वाला नहीं है, इतना मजबूत सहारा है। इसमें अल्लाह की गवाही है कि ये बड़ा मजबूत सहारा है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला है, समीम, वाहू भी हमारी जुबान का कलमा, अल्लाह भी हमारी जुबान का कलमा, समीम भी और अलीम भी हमारी जुबान का कलीम। लेकिन ये दोनों कलिमात समीम और अलीम भी फ़ईल के वजन पे आए, जिसके मानी अजल से अबद, अबद की ये सिफात, और ये सिफात भी मौसूफ की जाती है, किसी की अता करदा नहीं है। वल्लाहु, और अल्लाह है, वली उन, अल्लाह दोस्त है, वली है, अल्लज़ीना आमनु, अल्लज़ीना उन लोगों के, उन सब के वो वली और दोस्त हैं, आमनु जो ईमान लाए, आमाना ऐसा सी ईमान लाया, आकर पे वावलिक लग गई है, वावलिक तो अलामत है जमा की, जहां भी वावलिक वानून यानून आ जाएगा हम उसको अलामत जमा कहते हुए उस कलमे को जमा कर देंगे। आमना एक सच ईमान लाया, और आमन जो सभी ईमान लाए, अल्लाह वलीन आमन, अल्लाह उनका वली है जो ईमान लाए, युकरिजु हम, ये तो फिर मुजारे की अलामत, आखिर पे हम जो है उन सबके लिए आ गया, हूं वो एक मुजक्कर, हा वो एक मोहनस, हुमा वो दो मुजक्कर या दो मोहनस, हम वो सम मुजक्कर, और हम ना वो सम मुअन्नस, युखरिजु हम, बाकी कलिमा खारिज आ गया, हमारी ही जुबान का कलिमा खारिज बाहर निकलना, युखरिज वो बाहर निकालता है, हम उन सबको, मिन का कलमा भी हमारी जुबान में इस्तेमाल होता है, मिन जानिब उनकी जानिब से, मिन जुलुमात, जुलुमात का कलिमा भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अंधेरों से, जहालतों से, इला नूर, अंधेरों से इला की तरफ, अनूर रोशनियों की तरफ, अल्लाह उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनियों में ले आते हैं। अल्लाह वलीन मनो युखरिजुमी इला नूर, और जो लोग ईमान लाते हैं उनका हामियों मददगार अल्लाह है, उनका वली उनका अल्लाह है, उनका कारसाज उनका अल्लाह है, वो उनको तारीकियों से रोशनी में निकाल लाता है। वो लजीन काफरू, और वो लोग जो कि कुफर करते हैं, औलियाउहुम उनके औलिया हैं, जो कुफर करते हैं उनके भी औलिया हैं, उनके औलिया है, अब ताहूत और सारे के सारे ताहूत वो उनके वली, युखरिजू न हूं, ये फिर मुजारे की अलामत, आखिर पे हूं जो है वो तो जमा के लिए आ गया उन सब के लिए, और वाउन तो जमा की अलामत होती है, खाराजा वो बाहर निकला, युखरिजू वो बाहर निकलता है, निकालता है या निकाले जा, और वाउन वो निकालते हैं हम उन सबको, वो सारे ताबूत उन्हें निकालते हैं, मिनन नूरी नूर से रोशनी से, और यहाँ पर भी कलिमा अलिफ लाम के साथ नूर आया है, जुलुमात के साथ भी अलिफ लाम आया है, तो इससे मुराद वो अंधेरे नहीं, अंधेरे जो अदब की जबान में इस्तेमाल किया गया है, इससे मुराद जहालते हैं, और अनूर से मुराद वो रोशनी जो सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए होती है, मुराद अल्लाह की तालीमात, अल्लाह की हदायात है। मोहम्मद रसूलल्लाह जो फरमाते अनूर से मुराद वो नूर जो इंसान को जहालतों से निकालकर नूर में रोशनियों में ले आता है। युखरिजूनहुम मिनन नूरी इलल ज़ुलुमात, ये उसके बरक्स रोशनियों से निकाल के इंसान को जुलुमात और अंधेरों में ले जाते हैं, जहालतों और बुराइयों में ले जाते हैं। उलाइका, ज़ालिका और उलाइका भी बार बार आने वाला कलिमा है, ज़ालिका वो एक शख्स और उलाइका वो सब। उलाइका असहाबुन नार, वो असहाब है, साहिब की जमा है, वो वाले हैं। अन्नार, नार भी हमारी जुबान में इस्तेमाल होता है, साहिब भी हमारी जुबान का कलिमा है, लेकिन यहाँ अन्नार आया है, ये आग नहीं, वो आग जो आखिरत की आग है, जो मरने के बाद अल्लाह से कुफर करने वालों को मिलने वाली है। उलाइका असहाबुन नार, ये लोग आग में जाने वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, हुम वो सारे के सारे लोग फीहा उसमें होंगे, खालिदून, खालिद का कलमा भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं हम, खालिद कहते हैं हमेशा रहने वाले हैं, तो खालिदून वाउनून आखिर पे जमा की अलामत है, वो सारे हमेशा हमेशा उसी आग में रहेंगे। अल्लाहु वलीयुल्लज़ीन आमनू युखरिजुहुम मिनज़ुलुमाति इलन्नूर, जो लोग ईमान लाते हैं उनका हामी और मददगार अल्लाह है, उनको तारीखियों से रोशनी में निकालता है। वल्लज़ीन कफरू औलियाहुम तागूत, जो लोग कुफर की राह इख्तियार करते हैं उनके हामी और मददगार तागूत हैं। युखरिजूनहुम मिनन्नूर इलज़ुलुमात, वो उन्हें रोशनियों से तारीखियों की तरफ खींच ले जाते हैं। उलाइका असहाबुन नार हुम फीहा खालिदून, ये आग में जाने वाले लोग हैं जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ला इकराह फिद्दीन, दीन में शमूलियत के लिए, दीन में दाखिले के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कुव्वत का इस्तेमाल करना होता तो मेरे अल्लाह के पास कुन फायकून की कुव्वत मौजूद है। वो अगर इंसानों को हुक्म दे देता कि तुम सारे मेरे मुस्लिम और मती और फरमाबरदार हो जाओ तो किसी की जरूरत हो सकती थी कि वो अल्लाह की नाफरमानी करता। उसने अगर मलाइका को ये कुव्वत नहीं दी कि वो नाफरमानी कर सके, उसने अगर दुनिया के अंदर जो जो चीज बनाई है उसको इजाजत नहीं दी कि वो उसकी नाफरमानी कर सके, पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर न हिलता हो न लगता हो, उसकी नाफरमानी का वो सोच भी न सकता हो, वो चाहता तो न जिन्नों को इजाजत देता ना वो इंसानों को इजाजत देता। ये इजाजत उसने अपनी मशीयत के तहत दी है, खुद इजाजत दी है कि तुम खुद मुख्तार होकर आजाद मर्जी को देखते हुए, पूरी हुर्रियत है तुम्हें, आजादी है तुम्हें पूरी, रुश्द भी पूरी दिखा देंगे और कुफर का रास्ता भी पूरा दिखा देंगे, रुश्द पे चलने के नतायज क्या है वो भी पूरी बता देंगे और कुफर पे चलने के क्या नतायज होंगे वो भी पूरा बता देंगे। अब तुम्हारा इख्तियार है कि कौन सा रास्ता इख्तियार करो। इसलिए अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे दिया, और मोमिन भी इस दौर के अंदर जब इस दुनिया में आ गया है तो अल्लाह का जब काम करता है, अकामत दीन का काम करता है, तो दीन को जबरदस्ती नहीं मनवाता, तलवार के जोर से इस्लाम को नहीं फैलाता, دین کو منوانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ لازمن اس کے دین اسلام میں داخل ہو رہے ہو. اس نے پوری حریت اسلام نے دے دی, اور سب سے بڑی جو ہمارا خلیفہ ہوگا کتنی طاقت بیچارہ رکھتا ہوگا, ہماری سپاہ کی کتنی طاقت رکھتی ہوگی. سب سے بڑی طاقت والا تو خود اللہ, کل فائے کون کی قوت والا, اختیار تو وہ دے دے بیٹھا ہے. تو اس کے اختیار دیے کو کوئی چیلنج تو کر نہیں سکتا. مسلمان کو تو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان کرے, بلکہ اگر کوئی خود بھی دین کی بات کو سننے کے بعد مسلمان ہونا چاہے, اسلام چاہتا ہے کہ اسے کم از کم 3 دفعہ پوچھو اور اس بات کا یقین کر لو پہلے. کوئی جبر, کوئی لالچ, کیونکہ لالچ بھی جبر ہوتا. کوئی آدمی غریب ہو, اس کو کوئی کہے کہ میں تجھے دولت دے دوں گا, تجھے روٹی دے دوں گا, تجھے بھوکا ہے, تو کلمہ پڑھ لے, تو اگر اس نے اس بنیاد پر بھی کلمہ پڑھا ہے تو وہ بھوک کا جبر تھا اس پر. اس بنیاد پر مومن اسے کلمہ نہیں پڑھا تھا. کوئی خواہش تمہاری ہو اور اس کو تمہاری پوری نہ ہوتی ہو مسلمان ہوئے بغیر, اور تم کہو کہ میں اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مسلمان ہوا, تو تمہارا اسلام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اس کا اسلام مت قبول کرو, بلکہ اسے پوری آزادی دے دو. جی چاہے تو مسلمان ہو اور جی چاہے تو مسلمان نہ. لیکن ایک اور بات ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ جب محمد رسول اللہ کے زمانے میں افواج جاتی تھی, مسلمانوں کے جیش جاتے تھے, تو بستی والوں سے کہا کرتے تھے اسلم تسلیم, مسلمان ہو جا سلامتی پائے گا. اس سے لوگوں نے اس غلط مانی لیے کہ زبردستی تلوار کے ذریعے کہتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے. نہیں لوگوں, نہیں, اسلم تسلیم یہ مسلمانوں کا نعرہ ہے کہ لوگوں اسلام لے آؤ, دنیا اور آخرت کی فلاح پا جاؤ گے, یہ ہماری دعوت ہے. اسلم تسلم, قل لا الہ الا اللہ تفلحون, لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے, یہ ہے اسلم تسلم. زبردستی نہیں, ہاں دعوت کا کام کیونکہ اللہ کی طرف سے فرض ہو گیا ہے, اور جتنے انسان ہیں ان تک روشنی پہنچانا اللہ کی طرف سے فرض ہے. اس روشنی کو پہنچانے کے رستے میں اگر کوئی رکاوٹ بنے گا تو تلوار کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے. کوئی طاغوت, کوئی بادشاہ, کوئی ملک, کوئی جابر کہے کہ میری بستی کے اندر جہاں میں رہتا ہوں وہاں لوگوں کو میں نے اپنا بندہ بنا رکھا ہے, خبردار ہم اسلام کی دعوت نہیں دینے دیں گے, تو اس کو ہم تلوار کے ساتھ کلا کما کریں گے. تو یہ انسان اللہ کے بندے ہیں, اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک جانے دو, وہ مانے وہ نہ مانے, تم مانو تم نہ مانو, اس بات کا تمہیں اختیار ہے, لیکن دعوت کو روکنے کا اختیار تمہیں ہم نہیں دیں. تو جو دعوت کو روکے گا تلوار کے ساتھ اس کی گردن جوڑائے گا, لیکن اس کو ماننے کے لیے مجبور کرنا نہیں, اسلام یہ نہیں کرتا. اور کچھ لوگوں نے تو بڑا ہی دفاعی انداز بھی اختیار کیا, جی اسلام تو ساری مدافعانہ ہی کام کرتا ہے, کہیں جارحانہ کام کرتا ہی نہیں ہے, کہیں آگے بڑھ کر تلوار کا استعمال کرتا ہی نہیں ہے. نہیں, یہ بات بھی نہیں. اگر کوئی کفر ظلم کرنے لگے گا تو اس کفر کا ہاتھ کاٹنا اسی مسلمان پہ فرض, آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ کاٹے گا. اور اگر اسلام کے پورے معنی کو میں بتاؤں تو وہ ہے ہی یہ کہ دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے آنے والا ایک نظام ہے. وہ کہتا ہے کہ تم کسی کو قتل نہیں کر سکتے, لیکن اگر کوئی کسی پہ زیادتی کر رہا ہو تو وہ ہاتھ کاٹ دو جو زیادتی کر رہا ہو. کوئی کسی پہ ظلم کرنے لگے تو وہ ظلم کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا, یہ قرآن کی طرف سے ہم پہ حکم ہے. اور सिर्फ ये नहीं कि मेरे मुल्क में अगर कोई काटेगा कोई जुल्म करेगा तो मैं उस जगह पे वो काम करूंगा और अपनी तलवार का और अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। दुनिया के किसी कोने के अंदर भी मुसलमान तो अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसका दिफा के लिए मुझे खड़ा होना है, वरना मोहम्मद बिन कासिम एक बेटी की आवाज से अरब से चल के यहां दीबल की बंदर के बाद पे ना आता, वरना उस अब्बासी खलीफा की तरह जहां कदमोरिया के अंदर एक लड़की ने आवाज देकर पुकारा था जिसको बेइज्जत किया गया था, तो शहंशाह तो उस दिन जश्न मना रहा था, उसको बताया गया कि तू जश्न मना रहा है, अपने ताजपोशी का जश्न मना रहा है, और उधर बेटी ने पुकारा है, और तदमूर का इलाका रूम के अंदर था, वो तदमूर का इलाका कोई मुसलमानों की बस्ती ना थी, लेकिन एक मुसलमान लड़की ने वहां से पुकारा है, तो उसने कहा आज के बाद इस तख्त पर बैठना और अपने तख्त में सोना मेरे ऊपर हराम हो गया और कपड़ा बदलना भी मेरे ऊपर हराम हो गया, अब बेटी जब तक मैं तेरा बदला नहीं ले लेता। और तारीख इस बात पे गवाह है कि मंजिल पर मंजिल तय करते हुए वो खलीफा तदमूर पहुंचता है, तदमूर को फतह करता है और तदमूर को घेर कर फिर कहता है कि वो बेटी जिसने मुझे पैगाम भेजा था आज आए, और उस मंजिल को पकड़ा जाता है जिसने उसकी तोहिन की थी, और उसको कहा जाता क्या है, बेटी आज अल्लाह ने तुझे कुव्वत अता फरमाई है, अल्लाह ने तुझे ताकत अता फरमाई है, तूने मुझे बुलाया था मैं हाजिर हो गया हूं, इस्लाम की बेटी ने पुकारा था, इस्लाम का बाप हाजिर है आज बेटी मेरा, दो सजा देना चाहते हो बोलो आज इसको हम सजा देते हैं। तो बेटी ने कहा था कि शहंशाह ऐ अमीरुल मोमिनीन ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं सिर्फ उसे यह बताना चाहती थी कि कायनात के कोने में भी अगर औरत पुकारेगी इस्लाम उसकी मदद तो पहुंचता है, यह मजलूमों का दीन है, यह मददगारों का दीन है, यह अगर को तैन करने वालों का दीन है, वो मैंने इसे बता दिया, मैं इसे आज माफ करती हूं। मेरे रसूल ने भी ताकत को इस्तेमाल करने की बजाय जब फतह मक्का हो गई थी तो कहा था ला तसरीब अल यौम अलैकुम, आज हम माफ करते हैं तुम्हें, कोई मुआफा नहीं है, तो मैं अपने रसूल की सुन्नत को अदा करती हूं, मैं भी इसे माफ करती हूं। यह हमारी तस्वीर, यानी कि हम तलवार नहीं उठाते, उठाते कत्ल करते हैं फूल भागते, लेकिन जुल्म के खात्मे के लिए और किसी को मुसलमान करने के लिए नहीं। हां बता, यहां एक और मैं अगर बात को छोड़ दूं एक और गलतफहमी ज्यादा हो जाती है, वो अमूमन मेरे और आपके घरों में बात होती है, जब कोई मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान को दावत देता है, या अब बाप अपने बेटे को समझाता है, या मां अपनी बेटी को समझाती है, तो फौरन ही जवाब आता है ला इकराहा फी दीन। बाप कहता बेटा अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करो, ये अल्लाह का हुक्म है, बुरे की सोबत इख्तियार न करो, कहता अब्बा ला इकराहा फी दीन। बेटा मां कहती है बेपर धोकर घर से ना निकलो, अल्लाह का हुक्म है कि पर्दा करो, कहता ला इकराहा फी दीन, जबरदस्ती ना करो हम पे। कोई मुआशरे में समझाता है कोई एजुकेशन मखलूत सोसाइटी इस्लाम में नहीं है, कहते जबरदस्ती ना करो हम पे, क्या यहां भी जबरदस्ती नहीं होगी? ना जबरदस्ती होगी। नबी रहमत ने फरमाया कि अपना बच्चा जब वो 7 साल का हो जाए तो उसे हुक्म दो कि वो नमाज पढ़े, मुरहुम बिस्सबा, जब 7 साल का हो जाए तो उसे हुक्म दो कि वो नमाज पढ़े, वगरबुम बिलाशरा, और 3 साल तुम्हें समझाते हो गए फिर भी नमाज नहीं पढ़ता, और 10 साल की उम्र में से मार के नमाज पढ़ाओ। हमने यूरोप से सीख लिया है कि बच्चे के ऊपर सख्ती नहीं करनी, बच्चे की नफ्सियात को यूरोप जानता है कि अल्लाह जानता है, کہ رسول اللہ جو بات کہتے ہیں وہ اپنے پاس سے کہتے ہیں کہ اللہ کی بات وہ بتاتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بدرم ہوں بلا اشرا. اور بچہ ہمارے ساتھ سامنے غلط حرکت کرتا ہے یورپ کے اصولوں کو اپناتے ہوئے, ہم کہتے ہیں کہ اسے کچھ کہنا نہیں, اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے, برا منا جائے گا بچہ, اس حساب سے کمتری میں چلا جائے گا بچہ, سنب ہو جائے گا بچہ. سنب نہیں ہوگا, شرط یہ ہے کہ اگر تم نے اسے مسلسل دعوت کے فیلڈ کے اندر اسے سمجھایا ہو. بیٹا نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے یہ کہا ہے, ہمارے رسول نے یہ فرمایا ہے, بیٹا نماز پڑھنے پہ اللہ یہ اجر دیتے ہیں, بیٹا نماز نہ پڑھنے پہ اللہ یہ سزا دیتے ہیں. 300 سمجھاتے رہے, اور پھر اس طرح نہیں خالی سمجھانا کہ بیٹا اس کی سزا ہو جائے گی, اس کا جنت مل جائے گی. بچہ تو ابھی چھوٹی عمر کا, وہ جزا اور سزا سے بھی اوپر کبھی کبھی اپیل کا رستہ بھی اس زمانے میں استعمال کرنا ہے. پیارے بیٹے, اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو اللہ نے میرے اوپر تو تیری تربیت فرض کی ہے, میں نے تربیت تیری ٹھیک نہ کی تو اس کی سزا مجھے بھی ہو جائے گی. تو چاہتا ہے تیری امی جنت کی بجائے دوزخ میں چلی جائے, وہ آگ میں جلے؟ اپیل کر کر کے اسے سمجھانا ہے, پھر میری بات آتا تو مار کے سمجھانا ہے. میں اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فوج کے اندر داخل ہونا کیا سب پہ لازم ہے؟ جو فوج میں داخل ہو جائے صبح اٹھ کر لیفٹ رائٹ کرنا, ایکسرسائزز کرنا اس پہ فرض ہے. وہ جو سی او کی طرف سے, کمانڈر کی طرف سے جو اسے آرڈر آ جائے اس کو اوبے کرنا اس پہ فرض, وہ فوج میں جا چکا ہے. اگر وہ کہے کہ جناب میں آزاد مرضی پر ہوں, لا اکراہ فی الدین, دین میں تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے, اور کمانڈر کہے کہ صبح اٹھ کر تم نے فالن ہونا ہے اور اتنے بڑے تم نے پریڈ میں حصہ لینا ہے, وہ کہے کہ سردی بڑی ہے میں نے پریڈ میں نہیں آنا, تو فوج میں کیا شروع کیا جائے گا؟ اسے کمبل دے دیا جائے گا, پٹھو لگایا جائے گا, اللہ آپ کا بھلا کرے, اس کو سزا دی جائے گی. 6 صبح فالن ہونا تھا, تم نہیں آئے, پٹھو لگے گا تجھے. لیکن سول کے اندر بھی کبھی کسی کو پٹھو لگا ہے؟ سول میں کوئی آدمی فالن نہیں ہوتا, پریڈ نہیں کرتا, اسے کوئی پٹھو لگا سکتا ہے؟ لوگوں, اگر کوئی مسلمان نہیں ہوا تو اسلام کا بندہ خلیفہ پوری قوت رکھنے کے بعد باوجود اس پہ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ مسلمان ہو گیا ہے, کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے, وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے, خدائی فوجدار ہو گیا ہے, اب پریڈ نہیں کرے گا تو پٹھو لگے گا. اللہ نے کہا کہ شراب نہیں پینی, پیے گا سزا ملے گی. گناہ نہیں کرنا, کرے گا سزا ملے گی. اللہ نے کہا جوا نہیں کھیلنا, کھیلے گا سزا ملے گی. اللہ نے کہا کہ فلاں کام نہیں کرنا, وہ کرے گا تو اسے سزا ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ اس کو, اور اسلام کا فوجداری سارا نظام وہ اسی بنیاد پر ہے کہ نہیں ان المنکر. اب یہ جو نہیں ان المنکر کرنا ہے, اس حدیث کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں, اس کو بھی واضح کر لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ برائی کو ہوتے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روک دو. اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روک دو, زبان کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو دل میں برا جانو. یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین مقام ہے. ये इस्लाम के अंदर सबसे कमजोर है इस्लाम में, तो दिल के अंदर कम से कम बुराई को बुराई समझा, ये कमजोर तरीन मुकाम है। मैं इसके पहले मुकाम को दरअसल समझाना चाहता हूं कि सख्ती वो जुबा अपने कुवत का इस्तेमाल कहां किया जा सकता है, ये कौन करेगा, याना मुकाम किसको हासिल है, यह वो सवाल जिसके हम पता चलना चाहिए और न पता चलने पे गलतफहमियां हो जाती है। इस्लाम ने जो तरीका इख्तियार किया कि उसके अंदर इबारत सुनिए, यदऊना इलल खैर, बड़ी साइंटिफिक है ये इबारत, यदऊना इलल खैर, मोमन की शान यह है कि पहले मरले में लोगों को दावत देता है, ताकत के जरिए मुसलमान नहीं करता, दावत देता है, जो उस दावत को कबूल कर ले वो इस्लाम में दाखिल हो जाए, या मरून बिल मारूफ, वो नेकी का हुक्म देता है। अब नेकी का हुक्म कहां दिया जा सकता है, अपना बच्चा नमाज न पढ़े तो उसे सख्ती से भी हुक्म दे देना है कि नमाज पढ़, लेकिन यही काम हमसाये का बच्चा कर रहा हो वो नमाज न पढ़ता हो तो आप उसे दावत देंगे, उसे मार के नमाज पढ़ाएंगे, ना अल्लाह ने कहा है ना तुम कर सकते, करोगे तो फितरा पैदा हो जाए, ये तुम्हारा काम नहीं, उसका बाप उसे मार के पढ़ाए नमाज, उसकी मां नमाज पढ़ाने के लिए उसे मारे, ये उसका इस्तेहकाक है, क्यों नहीं मार सकते, क्यों नहीं मार सकते, इसलिए कि इसके ऊपर तुम्हारा इख्तदार नहीं है, उसके ऊपर उसके बाप का इख्तदार है, उसकी मां का इख्तदार है, तुम्हारा इख्तदार तुम्हारे बच्चे पर है, तुम्हारी बीवी पर, दूसरों पर नहीं है इख्तदार। तो मोमन या मरून है बिल मारूफ उस वक्त करते हैं जब वो नेकी की बुनियाद पर लोगों को इकट्ठा करके मुनज्जम कर लेते हैं, जब उनका कोई अमीर बन जाता है, मुनज्जम कर लेना यानी इस्लामी हुकूमत का बना लेना, पहले मरले में वो हुक्म देता है कि ये नेकी है, ये नेकी है, ये नेकी है, ये नेकी है, इसको करो, फिर वो नेकियां करते हैं और बुराइयों से जब इस पर पुख्ता हो जाते हैं तो हुकूमत वक्त का फर्ज होता है कि यह हौना ने मुनकर वो बुराई से रोके। अल्लाह तीन मुकाम यह कि पहले अल्लाह की हुकूमत को कायम करो, अल्लाह के दीन को कायम करो, अल्लाह के दीन का गलबा करो, और जब ये गलबा हो जाएगा तो फिर जो बुराई करेगा उसको हुकूमत के हाथ से निपटा जाए। और अगर कोई कहे कि जनाब गंदी वीडियो चला रहा है कोई बंदा, मैंने उसको जबरदस्ती रोकना है, तो फितना पैदा करेगा। इस्लाम में तो कत्ल जैसी गनोली काम के ऊपर भी किसी इंसान को इजाजत नहीं दी कि कत्ल के बदले में कत्ल ही सजा है, लेकिन तुम नहीं कर सकते, ये मुनज्जम इस्लामी हुकूमत ही करेगी, तुम्हें इजाजत नहीं है। और तुम कहो कि मैं बदला लेना चाहता हूं, नहीं तुझे बदला लेने की इजाजत नहीं है, तेरा काम इस्लामी हुकूमत तक सिर्फ बात को पहुंचाना है, इस्लामी हुकूमत भी डायरेक्ट बदला नहीं ले सकती, उसे पूरा मौका देगी अदलिया के अंदर कि वो अपनी सफाई को पेश करे, सफाई को पेश कर लेने पर अगर अदलिया समझती है कि ये बंदा वाकई मुजरिम साबित हो गया है, इसने वाकई चोरी की है, इसने वाकई फलां गुनाह किया है, तो फिर उस मौके के ऊपर वो अदलिया खुद सजा सुना सकती है, सजा दे नहीं सकती, सजा सुनाएगी उससे मुराद ये है, ये सजा सुनाने का रिकॉर्ड अब हुकूमत के हवाले किया जाएगा और हुकूमत अपनी ताकत के साथ उस पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगी। तो ये जाके फलां बुराई हो रही है, फलां जगह ये हो रहा है, हमने उसको जला देना है, हमने उसको तबाह कर देना है, हमने ये कर देना है, हमने वो कर देनी है, इस्लाम का तरीका नहीं। ला इकराह फिद्दीन, मैं बात वादे कर सका या नहीं जी, जो इस्लामी हुकूमत होगी उसने नहीं अमल मुनकर करना है, और अगर उस आला दर्जे पर नहीं आप पहुंचे तो फिर अभी आपका काम समझाना है, गुफ्तगुएं करना है, बातें करना है, उनको दावत देना है ताकि दीन की बुनियाद पर पहले इस्लामी मुमलकत बना ले। मैं मिसाल देता हूं, अगर नहीं समझा सका तो, मक्का में रसूलुल्लाह मौजूद थे, 85 के करीब सहाबा भी मौजूद थे, उस जमाने में मक्का में कोई दुनिया की इस जमाने में भी बुराई नहीं पाई जाती जो उस जमाने में वहां ना, हर तरह की बुराई मौजूद थी। और तो और खाना काबा के अंदर अल्लाह के मुकाबले पे 365 बुत रखे हुए थे, और तो और अल्लाह के पाकीज़ा घर का तवाफ भी नंगे होकर करते थे। रियानी का ये आलम था और कुबेदरी का ये आलम था कि बड़े बड़े सरदारों ने लड़कियां रखी होती थी, जब कोई उनका मेहमान आता तो जहां उसे खाना पेश करते साथ लड़की भी पेश करते थे, तानियात उन्हें कहा करते थे। कभी रसूलुल्लाह ने मक्का में ऐसा किया कि कहा कि ये बहुत बड़ी बुराई है, हम मर जाएंगे, हमारी गैरत का मसला है, हमारे ईमान की गैरत है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसको तोड़ देंगे चाहे हम शहीद हो जाए, या कभी रसूलुल्लाह ने ऐसा? इस्लाम में इसकी कोई इजाजत नहीं, इजाजत होती तो रसूलुल्लाह की गैरत ईमानी कभी दोबारा न करती कि मक्का की सरजमीन जो अल्लाह का घर है उसके अंदर 365 बुत रखे जाते। लेकिन आपने कभी कोई सी बुत को नहीं गिराया, बल्कि उसी जमाने में कहा कि लोगों के झूठे खुदा को बुरा ना कहो, कहीं तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा ना कहे, तहम्मुल और बुर्दबारी। लेकिन जब इस्लामी हुकूमत बन गई, नहीं अनल मुनकर जिसने करना था, जब इस्लामी हुकूमत बन गई, चाहे वो मदीना में बने या वो आके मक्का में उसकी तकमील हो, मक्का में आके बने, तो फिर किसी को मक्का के अंदर खाना काबे में बुत रखने की इजाजत दी? फिर किसी को कानियात रखने की इजाजत दी? किसी को शराब